ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
அதிஷ்டான சைத்தன்ய, சூட்சம் சரீர, சிதாபாசம், இஸ்கோ கஹதே ஜீவ. அவர் ஜீவ ஜோ அதிஷ்டான சைத்தன்ய வாஸ்தவ ஸ்வரூப் ஹே, உஸ்மே அஹம் புத்தி நஹீ கர்தா க்யோ திக்தா நஹீ. திக்தா ஹே புத்தி, உஸ்மே சிதாபாச. ஜப அந்தகரண கோ தேக்தா ஹே, உஸ்மே சிதாபாசி திக்தா ஹே. அவர் சிதாபாசி சேத்தன் ஜெசா லக்தா ஹே, அஹம் சேத்தன், சேத்தன அஹம் கரோமி, யே ஜோ ஜ்ஞான ஹோதா ஹே, சிதாபாசி திக்தா ஹே புத்தி மே. யே புத்தி சிதாபாசி கோ மிலா கர்கே ஏகத்வ அத்யாஸ் ஹோனே ஸே உஸ்மே அஹம் புத்தி ஹோதி ஹே. அவர் புத்தி கே தர்ம சுக துக்காதி கர்த்தத்துவ ஆதி சேத்தன ஆத்மா மே ஆரோபித்த ஹோதா ஹே. ஆத்மா கா சைத்தன்ய புத்தி மே ஆரோபித்த ஹோதா ஹே. இஸ்கோ கஹதே அன்யோன்ய அத்யாஸ், பரஸ்பர ஏகத்வ கா அத்யாஸ். அன்யோன்ய தர்ம தோனோ கா பஹலே தாதாத்ம அத்யாஸ் ஹோதா ஹே. ஜிஸ் பிரகார் லோஹ பிண்ட அக்னி, லோஹ அலக் ஹே, அக்னி அலக் ஹே, கிந்து அக்னி மே லோஹ பிண்ட ரக்கேங்கே லால் ஹோயா, தோ லோஹ பிண்ட அக்னி ஹே. तो उसको अग्नि शब्द से भी कह देते हैं, लौह पिंड भी कहते हैं, जला देती है. तो वहां लौह अग्नि भिन्न दोनों का जो एकत्व है वो अध्यास, उसको कहते धर्मी अध्यास. दो धर्मी का एकत्व भ्रम हुआ, दोनों का एकत्व भ्रम होने से धर्माध्यास होता है. परस्पर धर्म लौह पिंड में जो वर्तुलत्व गोलाकार है वो दिखता अग्नि में, अग्नि का जो दाहकत्व है वो दिखता है लौह में. तो धर्मों का परस्पर अध्यास हुआ. इसी प्रकार अंतकण में चिदाभास चेतन का एक तो अध्यास हुआ. जिस प्रकार घड़ा में जल है, जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखा, तो जल में आकाश दिखता है, बच्चा कहता है घड़ा में आकाश, जल हिला तो कहता है आकाश हिल रहा है. वस्तु तो जल और आकाश दोनों अलग अलग नहीं देख पाता है, वास्तव आकाश को नहीं समझ पाता है. जल में जो आकाश का प्रतिबिंब दिखता है उसको कहता है आकाश, जल अलग आकाश अलग प्रतिबिंब अलग नहीं समझ करके जब वो हिलता है जल कहता है आकाश हिल रहा है. इसी प्रकार अंतकण के साथ चेतन का एकत्व भ्रम हुआ. भ्रम होने से जीव अपना स्वरूप देखता है, जब बुद्धि को देखता है चिदाभास दिखता है, वही चेतन जैसे लगती है बुद्धि. तो उसमें एकत्व भ्रम होने से बुद्धि का धर्म सुख दुख कर्तव्य तो आत्मा में आरोपित तो होता है, आत्मा का चैतन्य बुद्धि में दिखता है. तो कहता है चेतन हो हम, मैं चेतन हूं, मैं करता हूं, मैं सुखी दुखी कहता है. बुद्धि में सुख दुख वृत्ति परिणाम है, वो परिणाम दिखता है चिदाभास में चेतन में, क्योंकि चिदाभास बुद्धि का एकत्व भ्रम होने से बुद्धि का धर्म चेतन में दिखता है, धर्माध्यास हो जाता है. तो इसे आरोप होकर के अपने को जन्म मरण वाला संसारी सुखी दुखी मानता है. जब वेदांत श्रवण करके ये समझ ले मैं तो बिंब रूप चेतन हूं, शुद्ध हूं, असंग हूं, सर्वव्यापक हूं, चिदावास नहीं हूं, चिदावास तो मेरा प्रतिबिंब बुद्धि में दिखता है. बुद्धि सब भिन्न भिन्न, सबके शरीर में अलग अलग बुद्धि, इसे अलग अलग घड़े में अलग अलग जल रखेंगे, प्रतिबिंब नाना हो जाते हैं, बिंब एक ही चंद्र आकाश में. ठीक इसी प्रकार बिंब रूप चेतन एक अद्वितीय है, सारे शरीर में अंतकर्ण भिन्न है, भिन्न अंतकर्ण में चिदावास अनेक दिखते है. जब साधन करके क्या समझना, मैं प्रतिबिंब नहीं वास्तव चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं चेतन हूं, और जो चेतन बिंब रूप चेतन है सबके अंदर बाहर वही मैं हूं. जितने प्रतिबिंब दिखते हैं, प्रतिबिंब का दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा, जल में भी प्रतिबिंब दिखता है. प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप क्या है, प्रतिबिंब जब दर्पण में दिखते हैं दिखता क्या है, दर्पण को देखते हैं, दर्पण के माध्यम से अपने मुख को ही देखते हैं. वहां दर्पण में कोई मुख प्रतिबिंब नामक वस्तु नहीं है, अपना मुख ही दर्पण के माध्यम से दिखता है. इसे प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप हो गया बिंब मुख है. और एक मुख में मुख का अनेक दर्पण में प्रतिबिंब एक होता है, अनेक दिखते हैं, एक है अनेक प्रतिबिंब, सब दर्पण प्रतिबिंब भिन्न भिन्न. अब प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप होता है बिंब ही है. यदि एक चंद्र का हजार घड़े में जल रखने पर प्रतिबिंब कितने होंगे, एक घड़ा नष्ट हो जाएगा, प्रतिबिंब उसमें नष्ट होगा रहेगा, जी घड़ा नष्ट हो गया उसे प्रतिमा नहीं रहेगा, अथवा घड़ा रहे जल चला गया छेद कर दिया जल निकल गया तो प्रतिमा दिखेगा। अच्छा एक घड़ा में प्रतिमा समाप्त हो गया तो सारे घड़े में अन्य घड़े में प्रतिमा रहेगा रहेगा। एक घड़ा को नष्ट करेंगे सब घड़ा नष्ट हो जाएंगे नहीं रहेंगे। इसी प्रकार अंतकरण एक शरीर में से निकल गया सूक्ष्म शरीर कहते मर गया, एक शरीर से सूक्ष्म शरीर चला गया तो सारे सब लोग मर जाते हैं कहते। आत्मा यदि एक एक मर गया तो सब मर जाए ये कहते हैं। एक एक जल को हिलाया एक घड़ा में प्रतिबिंब हिलने लगा तो सारे घड़े में प्रतिबिंब हिलता है नहीं हिलता है कहते। एक यदि दुखी हुआ सब रोने लगे, एक सुखी तो सब सुखी हो जाए। प्रतिबिंब में जल जिस घड़ा में है वहां प्रतिबिंब दिखता है, जल के कंपन हो तो प्रतिबिंब कंपन, सब जल में कंपन क्यों दिखेगा, बिंब में कंपन हो तो सब प्रतिबिंब में दिखेगा, बिंब स्थिर है प्रतिबिंब में कंपन दिखता है नष्ट कभी हो जाता है। जल के नाश जल नहीं रहा तो प्रतिबिंब नहीं रहा, जल को हिला है तो प्रतिबिंब हिलेगा। ठीक इसी प्रकार आत्मा एक ही बिंब अंतकरण जिसके अंतकरण में वृत्ति है सुख दुख वहां प्रतिमा में सुख दुख दिखता है। जो सुख शरीर चला गया उस स्थूल शरीर को कहीं मर गया और सब घड़ा नष्ट नहीं होते है। अच्छा प्रतिबिंब हजार घड़े में प्रतिबिंब कितने हो गए, हजार प्रतिबिंब हो गए, उनका वास्तव स्वरूप क्या है, बिंब रूप चंद्र है। चंद्र कितने हैं, और चंद्र है प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप। हजार प्रतिबिंब में से किस प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप बिंब रूप चंद्र है, सब का वास्तव, हजार प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप एक हो सकता है, हजार प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप एक चंद्र है, विचार कर देखो। इसी प्रकार हजार शरीर में जो चिदाभास दिखते हैं सारे चिदाभास का वास्तव स्वरूप कितने चेतन है, एक चेतन। तो आपका जो वास्तव स्वरूप है अन्य जीव का वास्तव स्वरूप वही या भिन्न है, इसी घड़ा में प्रतिबिंब, इसी घड़ा में प्रतिबिंब, हजार घड़ा में प्रतिबिंब, बिंब रूप चेतन किस प्रतिबिंब का, किस बिंब का प्रतिबिंब है, एक चंद्र का प्रतिबिंब, किस प्रतिबिंब का वो वास्तव स्वरूप है, सारे प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप एक चंद्र, सारे चिदाभासों का वास्तव स्वरूप एक चेतन है, वही चेतन सर्वव्यापक है, अलग अलग उपाधि से भिन्न भिन्न दिखते हैं। क्या विचार करना, मैं बिंब रूप चेतन हूँ, चिदाभास नहीं, प्रतिबिंब नहीं हूँ, ये जानने के लिए बुद्धि चिदाभास उसका भेद शरीर कैसे प्रतिबिंब दिखता है ये सब विचार करने पर अधिष्ठान चैतन्य में हूँ ये निश्चय करना है, चिदाभास नहीं हूँ, प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है। और चिड़िया जाकर चोच लगाती है प्रतिबिंब सत्य मान करके, इसी प्रकार क्या मानते हैं सब लोग जीव, ये बुद्धि में चिदाभास दिखता है उसको मैं मानकर बैठे हैं, बुद्धि जड़ है उसमें चिदाभास दिखता है उसको चेतन मान करके मैं इसमें मैं करते हैं, किसको, प्रतिबिंब को, बिंब को नहीं समझ पाते है। घड़ा में जल भरने पर जो घड़ा में आकाश था उसमें जल भरने के बाद वो आकाश रहता है या चला जाता है, वो आकाश को नहीं समझ करके किसको देखते हैं, आकाश के प्रतिबिंब को देखते हैं। इसी प्रकार बिंब रूप चेतन को नहीं समझ करके सब चिदाभास को देख रहे हैं, चिदाभास नाना है, चिदाभास नाना होने पर बिंब रूप चेतन नाना हो जाएगा क्या, तो बिंब रूप चेतन सर्वव्यापक सबके अंदर बाहर आकाश के समान एक है। घड़ा भी घड़ा की उत्पत्ति हो नष्ट हो, घड़ा में जल भरे या तो खाली हो, आकाश में कोई भेद नहीं, आकाश एक ही है, सब के सब घड़ा में आकाश एक रहेगा, सारे घड़े में आकाश एक है अनेक हो जाएगा, घड़ा को तोड़ देगा तो आकाश रहेगा, आकाश में कुछ नहीं एक अद्वितीय है और घड़ा बहुत ही, यही समझना है बिंब रूपों को। तो यहाँ कहा नाड़ी सब है ये चल रहा था ना, हृदय जैसा आत्मा, ये आत्मा हृदय में है, आत्मा का अर्थ सूक्ष्म सर्व अभिमानी जीव आत्मा हृदय में, वस्तु तो शुद्ध चैतन्य तो व्यापक है किंतु जीव आत्मा को चिदाभास को मान करके हृदय का अर्थ बुद्धि में जीवात्मा है, हृदय जैसा आत्मा हृदय में, हृदय कमल से अत्र एतद एक शतम नाड़ी नाम, नाड़ी नाम एक शतम, एक शत का एकाधिक शतम, एक से एक हृदय से नाड़ी निकलती कितने, एक से एक नाड़ी है, तासां शतम शतम एक एक स्या, एक एक नाड़ी में सौ सौ विभाग कर दो, एक सौ एक ही प्रत्येक नाड़ी में सौ सौ विभाग है, एक एक में सौ सौ होगा तो एक से एक में कितना हो जाएगा, दस हजार एक सौ हो जाएगा, दस हजार एक सौ नाड़ी है, कितने नाड़ी, दस हजार एक सौ हो गए, पहले कितने था, एक सौ एक प्रत्येक में हो गए सौ सौ, दस हजार एक सौ होने पर द्वा सप्तति प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणी भवंती, एक एक नाड़ी में बहत्तर हजार, बहत्तर हजार दस हजार एक सौ हुआ था, दस हजार एक सौ को बहत्तर हजार गुना करना, बहत्तर लाख होगा, बहत्तर करोड़ हो जाएगा, बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख हो जाएगा, बात दस हजार दो सौ एक नहीं हुआ, वो दिक्कत बोलते हो, ये दस हजार एक सौ को बहत्तर हजार गुना करेंगे तो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख होगा, आप वो संख्या देखे नहीं बोलो, हिसाब कर बोलो क्या हुआ, नहीं वो देख कर आप बोलते हो, हिसाब कर नहीं बोलते हो नहीं हाँ तो हम कह क्या कहते, एक से एक को सौ सौ गुना करने से दस हजार एक सौ हुआ, दस हजार एक सौ को बहत्तर हजार से गुना करेंगे तो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख होगा, अभी दस हजार दो सौ एक कैसे हो गया, बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख होने के बाद जो उसके पहले दस हजार एक सौ था उनको भी मिला दो, उसके पहले मूल एक सौ एक था उनको भी मिला दो, सबको मिला देंगे तो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक हो जाएंगे, इतने नाड़ीय भवंती आसु व्यानस चरती, इन नाड़ी में व्यान विचरण करता है, सब नाड़ी में व्यान व्यापक है, व्यापक होने से सब में व्यान विचरण करता है, जैसे सूर्य के किरण सब तरफ फैल जाती है, सब नाड़ी में व्यान इस प्रकार व्याप्त होकर रहता है, देह स्कंधे में मर्म देश में स्कंध में रह करके पान पान प्राण पान वृत्ति में रह करके कर्म, जब कुछ पत्थर उठाएंगे कुछ कर्म करना है, प्राण अपान दोनों को रोक करके करेंगे, जोर लगाना है कुछ उठाना, जोर लगाना है किसको, गाड़ी कभी नहीं चलती, गाड़ी को धात लगाओ धागो धक्का लगाओ, फिर वहां क्या करना, श्वास चलते हैं छोड़ना है, दोनों रोकना है, रोक करके जोर लगाएंगे, बड़े कुछ करना है तो रोक करके, कुछ नहीं उठता हिलता नहीं जोर होता है, इसको उठाने के लिए कहेंगे उठता नहीं जोर लगाओ, जोर लगाए तो प्राण अपान दोनों बंद करके ब्यान से उठाने पर जोर कर्म होता है, ये जैसे अहंग्र उपासना करना कैसे चाहिए इसके ऊपर कुछ बोल रहे थे, इसको अहंग्र उपासना कैसे करनी है वो बताते, थोड़ा अभी थोड़े सावधान से बैठना है, बैठते समय अभी यदि आराम से कुर्सी पर बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठो, जो नीचे बैठ सकता है नीचे बैठो, किन्तु बीच में हलना नहीं, हाथ पर हिलाना नहीं, ऐसे बैठना पड़ेगा, मैं जैसे कहूंगा ऐसे चिंतन करना है अभ्यास, आप जो ध्यान करते हैं मंत्र जप करते हैं उसका कोई निषेध नहीं है, जैसे जो ध्यान करते हैं ऐसे करना, किंतु ये जो अहंग्रह उपासना मैं बता रहा हूं जैसे शास्त्र में आया इसको करने के लिए बताएंगे, इसका भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना, अपने जो ध्यान द्वैत चिंतन हृदय कमल में बाहर ये सब करने के लिए कोई निषेध नहीं, हृदय में करो बाहर करो प्रतिमा में करो जैसे करो वो कोई आपत्ति नहीं, वो अलग है, किन्तु ये भी चिंतन थोड़ा शुरू करना, रोज थोड़े समय इसे करना, कि कैसे चिंतन करना, जैसे अभी बताया बिंब रूप चेतन एक है, सबके अंदर बाहर है, चिदाभास अनेक है, तो चिदाभास प्रतिबिंब दिखता है, और प्रतिबिंब मैं नहीं हूं मैं बिंब हूं, जैसे एक ही आकाश सबके अंदर बाहर है, सारे घड़े में है घड़े बाहर भी है, इसी प्रकार एक ही चेतन सबके अंदर भी है और बाहर भी है, जो चेतन हम कहते हैं जिसको चेतन जड़ विवाह करने के लिए लेते हैं वो तो चिदाभास प्रतिबिंब है, तो आप चेतन हो या जड़ हो, यह चेतन चिदाभास चेतन है या जड़ है, जड़ है, बुद्धि जड़ है या चेतन है, तो आप जड़ है या चेतन है, चेतन परिच्छन है व्यापक है, व्यापक चेतन आकाश के समान, जैसे आकाश व्यापक ऐसे चेतन व्यापक, आकाश का प्रतिबिंब घड़ा में छोटा छोटा दिखता है, प्रतिबिंब परिच्छन हो गया अलग अलग हो गया, किंतु बिंब रूप आकाश सर्वत्र है, घड़ा में जल भर जाने पर भी वहां आकाश रहता है, बाहर भी रहता है। जल भरेगा तो आकाश रहेगा, आकाश निकल जाएगा, वायु तो निकल जाएगा किंतु आकाश रहता है। वो जो आकाश व्यापक है वो स्थिर है। घड़ा को लेकर चलेंगे तो आकाश चलता है, चलेगा नहीं चलता है, निष्क्रिय है, व्यापक है। उसको चिंतन करना है। अभी मैं बताऊंगा स्थिर होकर बैठना और आंख बंद कर रखने का है। मोबाइल जिनके पास है बंद कर रखना, बीच में शब्द नहीं होना चाहिए। कोई सत्कर्म ध्यान भजन करते समय यदि कोई विक्षेप कर अन्य को से पाप होता है, स्वयं कर पा रहे नहीं करे कोई बात नहीं, दूसरे कोई करते भजन करते ध्यान करते उसमें विक्षेप करना नहीं चाहिए। हमेशा इसे ध्यान रखना चाहिए दूसरे को विघ्न नहीं हो। इसलिए अभी बीच में कहीं मोबाइल के शब्द नहीं आना चाहिए। सब बैठना, आंख बंद कर रखने का है। ध्यान नहीं भी लगे तो आंख बंद कराना है और हाथ पर हिला नहीं, ऊपर नीचे नहीं देखना है, स्थिर होकर के। यही जो बताया बिंब ऐसे अहंग उपासना समष्टि रूप से विराट के साथ भी कर सकते हैं, हिरण्यगर्भ प्राण में ऐसे भी कर सकते हैं। अशुद्ध चिन्मात्र जो ब्रह्म है असंग है वो भी चिंतन कर सकते हैं। और अन्य जितने उपासना है सब उपासना करने पर भी अहंग उपासना थोड़े समय करें, ये सब उपासना में श्रेष्ठ है। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी ने कहा अनुभूते रभावे भी ब्रह्मास्मि तेव चिंत्यता। अनुभव अब नहीं हुआ वो ठीक है, अनुभव नहीं होने पर भी जो वास्तव स्वरूप है आपका श्रुति के द्वारा कहा गया उसका ही चिंतन करे, मैं ब्रह्म हूं। वास्तव सत्य का चिंतन करे, कोई दोष नहीं, कोई आपत्ति नहीं, सत्य के समीप वही चिंतन सबसे श्रेष्ठ है उपासना। अनुभव तो बाद में होता है, ये नहीं कि अनुभव करने के बाद उपासना करना। अनुभव नहीं होने पर भी ऐसे चिंतन करने पर धीरे धीरे उसमें फिर चिंतन दृढ़ होता है तो अनुभव भी हो जाता है। तो अहंग उपासना करने के लिए मैं बताता हूं, ये पहले मैं बताया था श्लोक, अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यं शुद्धं अविक्रियं चिद्रूपस्य न मे जन्म कुतो मृत्युर्जरामयो। मैं बोलूंगा सब बोल देना धीरे धीरे करके, थोड़ा आवाज हो तो कोई बात नहीं, उसके बाद शांत बैठना। अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यं शुद्धम अविक्रियम् चिद्रूपस्य न मे जन्म कुतो मृत्युर्जरामयो। श्रुति प्रमाण सिद्धम् व्यापकम् चैतन्यम अद्वितीयम असंग स्वरूपम सत्यम ज्ञानम अपरिच्छिन्नम अनंतम ब्रह्म अहम अस्मि चेतन में हूं व्यापक जड़ नहीं, जड़ को मैं जानता हूं। दृश्यम जड़ रूपम दृक्तु चेतनम सर्व प्रकाशकम सर्वेषां भाषकम अंदर बाहर परिपूर्णम आकाश के समान बिंब रूपम अद्वितीयं ब्रह्म अहमस्मि परम ब्रह्म नित्यं शुद्धं अत्यंत शुद्ध है अविक्रिय आकाश के समान आकाशवत सर्वगतस्य नित्यः आत्मा। आकाश के समान अविक्रिय व्यापक है, देहादि दिखते हैं, मन में संकल्प विकल्प हो रहा है, ये सब मेरे दृश्य है। समुद्र में तरंग के समान मन में संकल्प विकल्प बाहर शब्द सुनाई पड़ता है, वायु से समुद्र में कंपन हो रहा है, जल में समुद्र में हानि नहीं लाभ नहीं, एक रूप है। शब्द सुनाई पड़े, मन में संकल्प विकल्प हो, चिंतन कुछ होता है, ये सब का अधिष्ठान में हूं आसंग आत्मा चेतना। मन है जड़, जड़ के धर्म जड़ में है, आत्मा में उसका कोई संबंध नहीं है। जल जैसे मरुभूमि में दिखने पर भी मरुभूमि में कोई संबंध नहीं है, इसी प्रकार असंग स्वरूप अहम नित्यम शुद्धम अविक्रियम चिद्रूपस्य न मे जन्म, चेतन रूप में हूं। चेतन का जन्म नहीं, मरण कहां से होगा, कुतो मृत्यु हो। चेतन में जरा अवस्था नहीं, आमय रोग भी नहीं, शुद्ध दृग रूप चेतन अहम अस्मि। असंगोहम समुद्र में तरंग जैसे, इसी प्रकार आकाश में शब्द, समुद्र का कोई परिवर्तन तरंग से, बुद्ध से, फैन से नहीं, शांत है। अधिष्ठान चैतन्य शुद्ध है, बाकी सब ज्ञेय पदार्थ दृश्य है, अध्यस्त है। स्वप्न दृश्य के समान दिखते हैं, संकल्प विकल्प हो रहा है, मन में कुछ विचार आ रहा है, ये सब कुछ मन में चल रहा है, आत्मा निष्क्रिय है, चेतन रूप है, दिग रूप है। मेरे साथ ये मन, मन के धर्म, आकाश के धर्म, शब्द, इनका कोई संबंध नहीं। शब्द होता रहे, मन में तरंग होता रहे समुद्र के समान, मैं तो अधिष्ठान रूप हूं, चिद रूप असंग हूं। बाहर वायु अंदर आता है, प्राणवायु बाहर निकलता है, सबके अंदर बाहर वायु समान एक रूप है। देह के अंदर प्रविष्ट होकर के अलग अलग लगता है, पूरा व्यापक आकाश में स्थित है। वायु का अधिष्ठान आकाश, इसी प्रकार एक है, सबके अंदर बाहर है। आकाश का कारण, आकाश को जानने वाले दृष्टा चेतन व्यापक है, सबके अंदर बाहर एक है, निष्क्रिय है, शुद्ध है, असंग है। बिंब रूप चेतन हम परिपूर्ण हम, नास्ति किंचितपि दृश्यम सर्वम अध्यस्तम अविद्यमानम नेह नानास्ति किंचन मिथ्यारूपम स्वप्न दृश्यवत प्रतीयमानम। प्रतीति मात्रम आत्मनि असंबद्धम अहमस्मि परम ब्रह्म नित्यं शुद्धमविक्रियं चिद्रूपस्य न मे जन्म कुतो मृत्युर्जरामयौ। ये अभ्यास करना, अन्य प्रकार चिंतन ध्यान का निषेध नहीं है, किंतु स्वल्प थोड़े समय अवश्य ही अहम अस्मि ऐसे चिंतन करें। घड़ा अनेक होने पर भी आकाश एक है, आकाश का कोई भेद नहीं होता है। इसी प्रकार शरीर भिन्न होने पर भी आत्मा एक है। घड़ा में जल रहे अथवा नहीं रहे, तो आकाश में कोई भेद नहीं, अंतकरण कहीं है कहीं नहीं है तो भी आत्मा में कोई भेद नहीं है। घड़ा कोई नष्ट हो जाए अथवा रहे, आकाश का कुछ बिगड़ता नहीं है। शरीर कोई नष्ट होता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई हिलता है, तो आत्मा में कोई नहीं है परिवर्तन। घड़ा में जल भरते हैं, परिष्कार हो अपरिष्कार हो, हिलता हो स्थिर है। आकाश में ना तो कंपन है ना मैला है ना कुछ भेद है। इसी प्रकार अंतकरण में शुद्धि हो अशुद्धि हो, अंतकरण अनेक है तो भी चिद रूप आत्मा बिंब एक है। जल के कंपन जल के अशुद्धि के साथ आकाश का कोई संबंध नहीं। अंतकरण की अशुद्धि अंतकरण के चांचल्य वासना संकल्प इनके साथ भी आत्मा का संबंध नहीं, आत्मा असंग है। इसी प्रकार चिंतन करें, अद्वितीय आत्मा आकाश के समान सबके अंदर बाहर एक है। प्रतिबिंब अनेक होने पर भी बिंब एक है। सबके शरीर में चिदाभास अनेक होने पर भी बिंब रूप एक है। ये थोड़े थोड़े अभ्यास करने पर धीरे धीरे समय बढ़े अधिक हो, ये अभ्यास करने से होता है। अन्य समय जिस प्रकार ध्यान जप आदि सब करे, किन्तु थोड़े समय से प्रारंभ करें,